ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, और ये आपके यहाँ चल रहा है दसवां स्कंद, और स्कंद का नाम है परम पुरुषार्थ, अध्याय दो, देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, और श्लोक संख्या 8। तो पहले शब्दार्थ उच्चारण कीजिएगा मेरे पीछे, देवक्याः देवकी के जठरे गर्भ में गर्भम भ्रूण शेषाख्यम कृष्ण के अंश शेष नाम से विख्यात धामा अंश मामकम मेरा ताद उसको सन्निकृष्य निकाल करके रोहिण्याः रोहिणी के उदरे गर्भ के भीतर सन्निवेश्य बिना कठिनाई के स्थानांतरित करो। हाँ, श्लोक का उच्चारण कीजिए, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्याः उदरे सन्निवेशया देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्याः उदरे सन्निवेशया देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्याः उदरे सन्निवेशया। आप लोग दोहराइए, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं किससे, योग माया जी से, देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के प्रथम अंश बलदेव हैं, जो शेष भी कहलाते हैं। भगवान का शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है, और इस अवतार की शाश्वत माता हैं माता रोहिणी। भगवान ने योग माया से कहा, चूंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं, अतः शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, और उन्होंने वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके, जिससे पहले ही 6 असुर षडगर्भ वास कर चुके थे। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि ये षडगर्भासुर भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर श्रील विश्वनाथ चक्ति ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। तो ये बहुत विशेषता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने बिल्कुल एज इट इज विश्वनाथ चक्ति ठाकुर का प्रपट दिया। विश्वनाथ चक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, समग्र सृष्टि तथा इसके वैष्टि अंश भी भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। इसलिए भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या भगवान ने स्वयं भगवद गीता 9 अध्याय 4 और 5 श्लोक में की है। माया तदम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च हमति सवस्थिताः न च मतस्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। फिर भी हर सृजित वस्तु मुझ में टिकी नहीं है। मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों का पालक हूं और सर्वत्र रहता हूं किंतु मेरी आत्मा सृष्टि का उद्गम है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर वस्तु ब्रह्म अर्थात भगवान का अंश है। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर सर्वत्र है, हैं भी नहीं। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है, इसे केवल अचिंत भेदाभेद दर्शन द्वारा समझाया जा सकता है। फिर भी ऐसे सत्य को शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवद गीता 18वां अध्याय और 55वां श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्तया मामा भी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भगवान को उनके असली रूप में केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते, किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। शुद्ध भक्त भक्ति योग की 9 विभिन्न विधियां संपन्न करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम दिव्य पद पर आसीन रहता है। इस तरह भक्ति को प्राप्त भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। इतने पर भी भक्त सदा डरता रहता है कि भौतिक जगत से सानिध्य होने से उसे अनेक कलमश प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वह सदैव भय के कारण चौकन्ना रहता है, जिससे उसका भौतिक सानिध्य क्रमशः घटता जाता है। प्रतीक रूप में माता देवकी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है आज के इस पॉपट की। शुद्ध भक्त को सदैव भौतिक सानिध्य से डरते रहना चाहिए, इससे भौतिक सानिध्य में रहने वाले सारे असुरों का वध हो जाएगा, जिस तरह कंस के द्वारा षड गर्भासुरों का वध हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मरीचि मन से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में मरीचि मन का अवतार है। मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य। भगवान शुद्ध भक्ति से प्रकट होते हैं, इसकी पुष्टि वेदों द्वारा हुई है। भक्तिर वेनम दर्शयति, केवल भक्ति से ही मनुष्य को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति की प्रतीक है और कंस भौतिक भय का प्रतीक है। जब भक्त भौतिक सानिध्य से डरता रहता है तो उसका असली पद भक्ति प्रकट होता है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मरीचि के 6 पुत्रों का ऐसे भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, तो भक्ति के गर्भ से भगवान उत्पन्न होते हैं। इस तरह देवकी का 7वां गर्भ भगवान के प्राकट्य को सूचित करता है। जब काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मांसर्य ये 6 पुत्र मार डाले जाते हैं, तो भगवान के प्राकट्य हेतु शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होती है, तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री विष्णु चौकती ठाकुर ने यही व्याख्या की है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चाद्देशधारिणे हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस सुबह की सभा में, जिसमें कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 2 और श्लोक संख्या 8। तो आपके यहाँ प्रसंग चल रहा है इस समय बलराम जी का, जैसा कि श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान योग माया जी को कह रहे हैं देवक्या जठरे गर्भम, कि देवकी के गर्भ में भ्रूण है शेष आख्यम, जो कि कृष्ण का अंश है, मेरा ही अंश है। शेष आख्यम धाम मामकम, धाम कहा जा रहा है बलराम जी को, धाम से संबोधन कर रहे हैं भगवान, क्योंकि बलराम जी क्या है, धाम प्रकट करते हैं, धाम की रक्षा करते हैं और धाम के ही क्या है, कंट्रोलर हैं। तो कृष्ण के अतिरिक्त जो भी बचता है वो शेष, इसलिए उनका एक नाम है शेष। और अगर संस्कृत आप ट्रांसलेशन में देखें, शेष जो शब्द है उसका अर्थ शेषता, अगर शब्द का अर्थ देखें तो आएगा एबिलिटी, उसका मीनिंग ट्रांसलेशन निकल कर आएगा एबिलिटी। शेषता का मतलब होता है योग्यता। तो उनके अंदर इतनी योग्यता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए कहा जा रहा है धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या। इसलिए हे योग माया जी, आप क्या करो, वहां से निकाल के रोहिणी के उदरे सन्निवेशया, और रोहिणी के उदर में इसको बिना कठिनाई के स्थानांतरित करो। तो भगवान योग माया जी को आज्ञा दे रहे हैं आज। तो जैसा कि मैं हमेशा थोड़ा भागवतम का महात्म्य चर्चा करता हूं, तो आज एक बहुत ही सुंदर प्यार मिला जिसमें कि भागवतम का भी गुणगान है और साथ में बलराम जी का भी गुणगान है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, जो कि श्री चैतन्य भागवत से प्यार है। चैतन्य भागवत अध्याय 1 श्लोक संख्या 25 में इसमें कहा गया, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, भागवत सुनी जार रामे नहीं प्रीत, विष्णु वैष्णवेर पथे से जन व्रजेत। वो कह रहे हैं जिसने भागवतम को पढ़ा, भागवत सुनी और रामे नहीं प्रीत, और उसकी प्रीति बलराम जी में नहीं होती, तो विष्णु वैष्णवेर पथे से जन वर्जित, ऐसे व्यक्ति को विष्णु और वैष्णव जन से वर्जित कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, कि राम में प्रीति नहीं है। तो ये संयोग है कि यहां आज की जो चर्चा है मुख्य, वो बलराम जी के विषय में ही हम करेंगे, क्योंकि श्लोक में कहा जा रहा है कि बलराम जी को देवकी के गर्भ से प्रकट करो, कहां स्थानांतरित करो, रोहिणी के गर्भ में। तो देखिए, जो बलराम जी हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बलराम जी गुरु तत्व हैं, और आपने पीछे सुना होगा कि जो 6 मरीचि के जो पुत्र थे उसका प्रसंग आया था, मैंने देखा पीछे श्लोक में प्रभुपाद जी ने नाम भी बताया कौन कौन थे। ब्रह्मा जी को देखकर वो हंसे थे, वैष्णव अपराध के कारण उनको एक ऐसे स्थान में जन्म लेना पड़ा हिरण्यकश्यप के नाती के रूप में, और फिर हिरण्यकश्यप ने फिर से श्राप दिया तो वो यहां आ गए, कहां पे, देवकी के पहले 6 पुत्र। तो पहली तो ये चर्चा करते हैं कि भगवान देखिए किस प्रकार से जीव जो ज्यादा इंटेलिजेंट बनता है, भगवान उसको कैसे क्रैक करते हैं, पूरी तरह से उखाड़ देते हैं। वो सोच रहा था कालनेमी कि मैं बदला ले रहा हूं, और कंस के रूप में मार रहा था बच्चों को, किस तरह से 6 बच्चों को उसने मारा, लेकिन पिछले जन्म में वही उसको नर्सिंग होम में लेके गया हुआ जब वो पैदा हुए होंगे, है ना, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन भी शायद हो सकता है लगवाए हों। पिछली बार तो उसने कितना कार्य किया था, कितना ज्यादा प्रयास करते हैं हम बच्चों के लिए, लेकिन अगले जन्म में वही शत्रु के रूप में प्रकट होकर उन्हें मार करके और प्रसन्न हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो भगवान की जो माया है, जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते वो जीव को बहुत धोखा देती है। तो ये जो छह असुर थे प्रकट हुए यहां पर, और चूंकि वो स्थान गंदा हो गया था इसलिए गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी जो गुरु तत्व होते हैं वो स्थान को सुंदर बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, जहां पर कुछ कृष्ण रूपी फसल उग पाए, नहीं तो बंजर हो जाती है। हमारा जो हृदय है, जो भौतिक संसार के जब हम सानिध्य में जाते हैं तो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी का कार्य क्या होता है कि वो आकर फिर से हमें लेकर आते हैं उसी भाव में। तो गुरुजी का कार्य क्या है, सर्व रूप आस्वादय कृष्ण सेवानंद। जैसे हम लोग रोज जो गाते हैं मंगल आरती में, गुरुवाष्टकम में आता है ना कि प्रति क्षण आस्वादन, प्रति क्षण आस्वादन करते हैं वो भगवान की लीलाओं को। तो गुरुजी जो यहां पर हैं बलराम जी, सर्व रूप आस्वादय, भगवान श्री कृष्ण के सारे रूपों को आस्वादन करते हैं, और कृष्ण सेवानंद, और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आनंद लेते हैं। तो गुरु का यही कार्य है कि वो स्वयं भी लेता है और साथ में सबको इस कार्य में लगाता भी है। तो हमारे जो गुरुजी हैं, जैसे हम लोगों ने भी दीक्षा ली है, हमें अपने गुरुजी को ऐसे सोचना चाहिए। एक बार हिज होलीनेस हल्दर महाराज ने ये बताया था अपने क्लास में कि मेरे जो गुरु हैं वो श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए मेरे गुरु के रूप में, ताकि मैं अपने भगवान की सेवा कर सकूं। तो एक शिष्य को अपने गुरु को ऐसे देखना चाहिए, साक्षात हरि त्वेन, ये साक्षात हरि हैं जो कि मेरे लिए प्रकट हुए। और जब ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति होती है और भगवान के प्रति होती है, तो हमारे अंदर अपने आप ही सारा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है और कृष्ण में आसक्ति हो जाती है बड़ी आसानी के साथ। तो हम भक्तों को ये मानना चाहिए कि जो हमारे जो गुरु हैं ये बलराम जी का ही एक एक्सपेंशन है और स्वयं प्रकट हैं। तो अंदर से वो परमात्मा रूप में और बाहर से गुरु के रूप में संबोधित करते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन किंतु प्रभो रहा, लेकिन ये भी साथ साथ जानना चाहिए कि वो भगवान नहीं है। सम्मान भगवान के समान करना है लेकिन वो भगवान नहीं है, ये भी जानना चाहिए। चूंकि कृष्ण तो आएंगे नहीं, देखिए हमारे पास उसी दिव्य रूप में हमें संबोधन करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, हमारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, चूंकि हमारे डेली के क्वेश्चंस होते हैं, जब भी महाराज आएंगे तो हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके जाएंगे। अब कृष्ण तो ये डीलिंग्स करेंगे नहीं, तो भगवान ने इसलिए गुरु को प्रकट किया है संसार में, और बलराम जी के थ्रू, बलराम जी का ही एक्सपेंशन है जितने भी हमारे गुरु महाराज हैं। है क्या, थोड़ा सा चर्चा करते हैं शेष की तत्वों की, आज बलराम जी तत्वों की, चूंकि भगवान बोल रहे हैं आज कि मेरा ही अंश है। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो वास्तव में एक ही एक शरीर है, सिर्फ यह है कि वहां से वो विस्तार हुए हैं, दो शरीर हैं, लेकिन जैसे मोबाइल में भी आपने देखा होगा ना कि एक ही मोबाइल में दो सिम आ जाती हैं, तो उसी प्रकार से कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं, कार्य के हिसाब से उनको एक दूसरा शरीर लेना पड़ा है भगवान को। क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं, भगवान अपने धाम में क्या करते हैं, चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षा व्रतेशु सुरभि रभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। वो तो अपना गायों को चराते हैं और बस आनंद लेते हैं, उनका ये कार्य नहीं कि वो सृष्टि को संभालें कुछ देखें। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, भगवान ने क्या किया कि बलराम जी के रूप में अपना एक एक्सपेंशन करके उनको बोला कि आप सब संभालिएगा, ये सब मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बड़ा सुंदर प्यार बोलते हैं, सृष्टादि की सेवा तार आज्ञा पालन शेष रूप करे कृष्ण विविध सेवन। उन्होंने आज्ञा दी, देखिए क्या कह रहे हैं, सृष्टि का आदि सेवा तार आज्ञा पालन। बलराम जी को कहा गया आप ये सब संभालिए, ये सब डिपार्टमेंट जितने भी हैं। और बलराम जी क्या करते हैं कि पांच रूपों में भगवान की सेवा करते हैं, सृष्टि की जो लीला है पांच रूप धारण करके, प्रभुपाद जी श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला और अध्याय पांच और श्लोक संख्या चार के तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि पांच रूपों में भगवान की सेवा करते हैं वो। कौन कौन से? एक तो है संकर्षण, महासंकर्षण के रूप में, एक मूल संकर्षण कहलाते हैं वो। दूसरा तीन विष्णु हम जानते हैं, कारणोदकसाय विष्णु, गर्भोदकसाय विष्णु और क्षीरोदकसाय विष्णु। और पांचवा बचता है शेष अनंत, उसमें वो कार्य करते हैं विभिन्न लीलाओं के साथ में, स्वयं भगवान के साथ प्रकट होते हैं, कभी बलराम जी के रूप में, कभी लक्ष्मण के रूप में, कभी नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी का ये कुछ तत्व हमने चर्चा की, जो कि अब देखिए गरुड़ जी, जैसे आपके यहां मैं अभी प्रणाम कर रहा था तो प्रभुपाद जी एक प्रपट में बता दें कि जो गरुड़ जी हैं वो भी बलराम जी के ही एक्सपेंशन है। तो सैया आसन, जैसे हम जानते हैं भगवान जो बलराम जी हैं सब कुछ बनते हैं, भगवान के अतिरिक्त जितना भी संसार में दिखाई देता है वो सब बलराम जी की ही सेवा है, इसलिए उनका ये नाम भी है शेष। शेष जितना भी कार्य वो उनके अंडर में आता है। तो बलराम जी रोहिणी देवी के नित्य पुत्र हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार उनके पुत्र बने हैं। लेकिन देखिए यहां पर ट्विस्ट क्या है भागवतम के अंदर, कि बलराम जी रोहिणी के नित्य पुत्र हैं लेकिन प्रकट हो रहे हैं किसके गर्भ में? देवकी के गर्भ में आ रहे हैं। नित्य पुत्र हैं रोहिणी के और आ रहे हैं कहां पर? क्यों आए हैं? जब आप उनके बेटे हो, सनातन बेटे हो, तो वहीं अवतार लेना चाहिए था आपको। लेकिन चूंकि गुरु तत्व हैं और कृष्ण जब वहां पहुंचेंगे, जैसे आप आजकल देख रहे हो इलेक्शन चल रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री जहां भी जाएगा या नेता जाएगा तो उसके जो और लोग होते हैं, जो कंट्रोलर होते हैं, वो स्थान को साफ सुथरा बनाते हैं, कुछ माइक सिस्टम फिट करते हैं, कुछ और करते हैं ताकि उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसी प्रकार से बलराम जी फिर आए देखने के लिए कि यहां पर छह असुर निवास किए थे, अब कृष्ण के लिए ठीक अनुकूल है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा हृदय भी है, हमारे हृदय में भी जो छह असुर हैं, जैसा प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरिया, तो गुरु जी की सहायता से ही ये सब निकाला जा सकता है। इसे बलराम जी ने द्रोहिणी के नित्य पुत्र होते हुए भी भगवान कृष्ण की इच्छा से कहां प्रवेश पाया? देवकी के गर्भ में गए और देवकी के गर्भ को शोधन किया, स्वच्छ बनाया, वहां पर अनुकूल बनाया भगवान के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को क्या बोलते हैं? आचार्य माम विजानियात, कि जो आचार्य होता है उसे मेरा ही रूप मानना चाहिए। और गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है उसे मैं अपने समान मानता हूं, क्योंकि ये ज्ञान क्या है? राज विद्या राज गुह्यम, ये सब विद्याओं में सबसे बड़ा राजा है। तो हम लोग कितने साथ ज्यादा भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमें इस सेवा में लगाया, कि जो सबसे ऊंची कोटि का जो ज्ञान है राज विद्या, उस सेवा में हम लोग लगे हैं। तो हमें हमेशा ही प्रभुपाद का, आचार्यों का, भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। और जितनी भी फैसिलिटीज हमें मिली हैं, हमें, मैं तो ये प्रे करता हूं सारे भक्तों से कि डेली हमें एक बात जरूर धन्यवाद देना चाहिए भगवान को, भक्तों को, जिन्होंने इतनी सुंदर सुविधाएं हमें दी हैं, थैंक्स करना चाहिए। और जितना ही हम थैंक्स करेंगे, जय श्री श्री राधा राधिका मंदे भगवान की जय, कृष्ण बलराम देव भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय, चूंकि जितना ही हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उतनी हमारी भक्ति में क्या होगा? और इंक्रीमेंट होगा। जब हम शिकायत करते हैं तो भक्ति में हम नीचे जाते हैं। तो ये बड़ा ही ऐसा सिद्धांत है कि जब आप मान लीजिएगा बहुत बड़ी कुछ ऐसा सामग्री रखी है और हल्की सी एक चिंगारी सी वहां पर है, छोटी सी है, तो वो बुझ जाएगी थोड़े दिन के बाद, थोड़ी देर के बाद। लेकिन अगर आप उसी चिंगारी को हवा दोगे तो वो चिंगारी में आग प्रज्वलित होगी और पूरे उसको जला देगी। तो हम अगर डेली एक प्रेयर ये अपने लाइफ में शामिल कर लें कि मैं रोज धन्यवाद दूंगा भक्तों को, प्रभुपाद को, गुरु महाराज को, सारे वैष्णव आचार्य को, भगवान को, कि उन्होंने हमें इस सेवा में लगा लिया, तो उसको अगर हम अग्नि को हवा देंगे, उस पॉजिटिविटी को, तो हमारी भक्ति तेजी के साथ इंप्रूवमेंट में आएगी। तो इससे हम देखते हैं कि जो भगवान है कितनी सुविधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब गोपाल चंपू में एक छोटी सी घटना मिलती है कि जब 7 मास का गर्भ हो गया रोहिणी को, और रोहिणी कहां रहती थी, कंस की जेल में वसुदेव देवकी के पास ही रहती थी, और वहां पर बताया गया कि वसुदेव जी को आज्ञा भी थी, वो जा भी सकते थे, गोकुल में भी जा सकते थे, जेल में थे, लेकिन देवकी को क्योंकि ऐसा पुत्र होना था जिसने कंस को मारना था, तो देवकी को आज्ञा नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन वसुदेव को आज्ञा थी, वो जा सकते थे मिलने के लिए कहीं कहीं अपनी पत्नियों से और पत्नियों से। तो जब रोहिणी गर्भवती हुई तो वसुदेव जी ने कहा कि अब आप गोकुल चली जाओ, और जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में बता रहे हैं कि एक संध्या के समय, शाम के समय उन्होंने कई घुड़सवार बुलाए और रोहिणी देवी को सौंपा कि इसको नंद भवन में ले जाओ और वहां पर अब ये रहेंगी, चूंकि 7 मास का गर्भ हो गया। तो वहां पर फिर योग माया जी ने क्या किया, जब वो एक बार शयन कर रही थी तो उस गर्भ को अपसारित कर दिया, बिल्कुल यही शब्द है वहां पर, अपसारित का मतलब समाप्त कर दिया, और वहां से देवकी के यहां से कर्षण किया, वो जो 7वां गर्भ था अर्थात बलराम जी को वहां से निकाल के और यह रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और रोहिणी देवी को ऐसा लगा जैसे स्वप्न में उनको देख रही हो इस दृश्य को, उनको पता भी नहीं चला। अब आप सोचिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है योग माया जी के पास, अगर हमारा हल्का सा कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होना हो, ट्रांसप्लांट होना हो, कुछ चेंज करना हो, किडनी ट्रांसप्लांट होनी हो, तो कितना पहले तो वो देसी सिया दिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाएगा, वो एडमिशन रहेगा, कितने दिन के बाद उसको छुट्टी मिलेगी, और यहाँ पर पेशेंट को पता भी नहीं चला कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आ गया, और माता रोहिणी को कुछ पता ही नहीं है, उनको लगा स्वप्न देख रही है। तो कितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी भगवान की, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि पता भी नहीं चला, और बलराम जी वहां स्थापित हो गए। वहां पर बताया गया गोपाल चंपू में कि ये जो रोहिणी है पिछले मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में, ये पहले जो कश्यप ऋषि थे उनकी पत्नी थी कद्रु नाम की, और इससे सारे सर्प पैदा हुए सृष्टि के अंदर। कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां थी ना, तो जितने भी पक्षी हैं वो भी कश्यप ऋषि से आए, तो जितने भी सर्प हैं ये कद्रु नाम की जो दक्ष प्रजापति की 11वीं श्रेष्ठ कन्या थी, इससे सारे के सारे सर्प पैदा हुए। आपने सुना होगा कालिया नाग, कालिया दमन, ये भी उसी का बेटा था कद्रु का, और ये वहां पर रहता था, लेकिन अनंत शेष भी कद्रु के ही बेटे हैं। अगर आप अनंत भगवान जो प्रकट हुए चाक्षुष मनवंतर में, इस मनवंतर में नहीं, तो जब वैवस्वत मनवंतर आया, इस वैवस्वत मनवंतर में रोहिणी वही प्रकट हुई, कद्रु ही रोहिणी के रूप में प्रकट हुई, और यहां पर बलराम जी चूंकि ये उनके नित्य पुत्र हैं और ये उनकी सनातन माता हैं, तो यहां पर इनका जन्म हुआ। और इधर प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में दिया है, बहुत सुंदर टीचिंग्स दिया है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने बताया था कि देवकी जो है भक्त अवतार है, देवकी जो है भक्ति का प्रतीक है, और कंस किसका प्रतीक है, भौतिक भय का प्रतीक है। और अगर भक्त लोग थोड़ा सानिध्य से दूर रहे, भयभीत रहे भौतिक संग से, जैसे देवकी ने क्या किया था, वो हमेशा कंस का नाम सुनते ही भयभीत हो जाती थी, तो उस भय ने ही असुरों को मार डाला जो देवकी के गर्भ में थे। एक अलंकारिक भाषा में इसको समझाया, लेकिन हमें अपने लाभ के लिए इस टीचिंग्स को लेना है, जैसा कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि जब तक भक्त लोग भौतिक सानिध्य से डरेंगे नहीं तब तक वो सुरक्षित नहीं है। इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी ने लेक्चर में कहा द माया कैन नॉट टच मी, माया मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। और जब प्रभुपाद लेक्चर देने के बाद ऑल्टर में, ऑल्टर के पास गए और प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभुपाद धीरे धीरे बोल रहे थे ऑल्टर के सामने कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी माया से मेरी रक्षा करना। तो एक भक्त ने सुन लिया, अरे अरे अभी अभी तो प्रभुपाद ने व्यास आसन पे कहा माया कैन नॉट टच मी, और अभी भगवान के सामने कह रहे हैं प्रभु माया से मेरी रक्षा करना। तो उसने जब प्रभुपाद वॉक के लिए चले तो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद अभी अपने व्यास आसन पे कहा कि माया मुझे छू नहीं सकती और अभी आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि माया से मुझे बचा ले। तो आजकल एक हमारे एक मॉडर्न भक्त हैं निताई प्रभु बॉम्बे में, उन्होंने एक भजन भी लिखा, माया हटा ले माधव बचा ले जला दे मन का दिया। आपने सुना होगा ना भजन, बड़ा ही फेमस उन्होंने लिखा है, ये हिंदी भजन है, कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा अब तो कर दे दया। तो प्रभुपाद जी हमेशा भगवान के सामने जाकर के ये विनती करते थे कि माया से मुझे बचा ले, माया हटा ले। तो उस भक्त ने पूछा तो प्रभुपाद ने कहा इसलिए कृष्ण मुझे माया से बचाते हैं, चूंकि मैं डेली प्रार्थना करता हूं कि माया से मुझे बचा लो हे कृष्ण। और मेरे भक्तों में एक सबसे बड़ी कमी है, प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरे भक्तों में सबसे बड़ी कमी है कि वो माया से डरते नहीं है, माया से पंखा ले लेते हैं। उनको चाहिए कि रोज जाकर के भगवान से प्रार्थना करें कि माया से बचाइए, क्योंकि माया इतनी फास्ट है कि अगर थोड़ी सी भी वैकेंसी देखेगी कि इस भक्ति के जीवन में जो 24 घंटे में से कितना थोड़ा भी अगर स्पेस है वही माया आ जाएगी। इसलिए निरंतर कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। माया तुरंत झपट्टा मारकर दबोच लेगी, माया साथ चलती है जब जहां भी हम जाते हैं ना, जैसे मृत्यु देवी का बताया गया कि जहां हम जाते हैं मृत्यु देवी साथ रहती है, तो माया देवी भी साथ रहती है आपके। आप भले ही मंदिर में हो, भले ही आप पूरे कहीं भक्ति के प्रोग्राम में हो या मॉल में हो, कहीं भी जाएंगे माया आपके साथ रहती है और वो देखती रहती है। देखिए कितनी सटीक सेवा करती है माया देवी, भगवान की कितनी कितना सिंसियरिटी है उसकी भगवान के प्रति, भगवान ने लगाया हुआ है उसको कि जैसे जीव मुझे भूले दबोच लो उसको। तो हमें माया से हमेशा डरना चाहिए, जैसे देव की माता कंस रूपी भौतिक सानिध्य से डरते डरते क्या हो गया, जब हम डरेंगे तो क्या होगा। श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर लिखते हैं कि जब हम डरेंगे घबराएंगे भौतिक संग से तो वो जो असुर है वो खत्म हो जाएगा और फिर हमें ऐसे विचार नहीं आएंगे। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने पत्र लिखा, अभी कुछ दिन पहले आया था कोर्ट ऑफ द डे में सिले प्रभुपाद को, कि प्रभुपाद मेरी स्थिति ऐसी है, मैं हमेशा डरता रहता हूं किसी भक्त के प्रति मेरा अपराध ना हो जाए, कहीं मैं माया में ना गिर जाऊं, मेरी स्थिति कैसी है। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा गोपाल कृष्ण आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, हर भक्त की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए, आपकी स्थिति सुरक्षित है ये समझो। जब भक्त डरता रहता है माया से तो उसकी सुरक्षा निश्चित है। तो भक्तों को चाहिए, आज का जो प्रसंग है केकई क्षमा कीजिए देवकी जो हैं वो इसलिए ही सुरक्षित रह पाई चूंकि वो कंस रूपी भौतिक सानिध्य से डरती थी और उसी ने मार डाला उन असुरों को। जब भक्त लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, देखिए जब आप भक्ति करते हो आप श्रवण कीर्तन करते हो तो लबालब ऊपर से माल भरा जाता है भक्ति का माल, है ना, लेकिन अंदर अंदर हमारे वो जो असुर बैठे होते हैं ना, काम क्रोध जो प्राइवेट होते हैं, जिनको केवल हम जानते हैं कि मेरे अंदर और क्या क्या मसाला है जो मुझे कभी भी हटा सकता है इस शुद्ध मार्ग से, तो वो स्थापित रहता है हमारे अंदर। और भक्त कभी कभी वो विचार आते हैं हमारे सामने, जब भी हम कहीं बिलबोर्ड में दृश्य देख लें या हम अकेले हों तो कभी कभी वो विचार भी आते हैं हमारे मन में, और उस समय भक्त क्या कहता है, उस समय भक्त कहता है हाय हाय, अपने आप से बोलता है वो भक्त, हाय हाय ये विषय तो मुझे संसार रूपी अंधे कुएं में डुबो देंगे। इसलिए विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर की कोटेशन है कि भक्त भक्ति करता है श्रवण कीर्तन करता है उसके सारे लक्षण सामने भी प्रकट होते हैं, लेकिन जो पहले से डिपॉजिट संपत्ति है वो जो अवगुण है वो कभी कभी प्रकट होते हैं हमारे आगे। और भक्त जब ऐसा करता है कि हाय हाय ये विषय तो मुझे डुबो देंगे, इस भय के चलते अगर ये कभी ऐसे विचार प्रकट हों तो भक्त को जब बहुत ज्यादा भयभीत होता है, उस भक्त को इतना ज्यादा भयभीत हो जाना चाहिए जब कभी ऐसे विचार हमें
तंग करें, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए अपने किसी वरिष्ठ वैष्णव से, और बहुत ज्यादा चिंतित हो जाना चाहिए। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कह रहे हैं, जब वो इस भय के चलते उन विषयों से बहुत घबरा जाता है और डिस्क्लोज कर देता है किसी वरिष्ठ वैष्णव के सामने, तो उनकी निवृत्ति हो जाती है, तो वो व्यक्ति बच सकता है उससे। और उस समय ही भागवत यश का श्रवण, कीर्तन, परिचर्या आदि भक्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि आपने मवाद निकाल दिया। जब तक अंदर मवाद रहता है तो वो अंदर उबलता रहता है, लेकिन जब गंदा विचार आपने किसी के सामने डिस्क्लोज कर दिया तो वो क्या होगा, फिर वो शांत हो जाएगा। और आगे कह रहे हैं कि फिर वो भगवान की जो भक्ति है वो बढ़ने लगती है। यह रति भाव जितना अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है, उतना ही भगवान के रूप गुण रूपी महासमुद्र का प्रादुर्भाव होता है। ये बड़ा ही सुंदर लॉजिक दिया उन्होंने कि जो हमारे आंतरिक जो अवगुण हैं वो हमें जरूर सामने कभी कभी उछल कर आएंगे। कुछ भी हम देखेंगे तो हम आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में भक्त को घबराना चाहिए। हम ऐसा उदाहरण किसका देखते हैं, सबसे क्रूड एग्जाम्पल देखिए भागवत में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि माया से वो इतना डरता था कि उसने एक शब्द नहीं बोला। कौन है वो? जड़ भरत। जड़ भरत ने एक बार माया से थोड़ा सा ले लिया था, एक हिरण को देख लिया भरत के रूप में, देखिए। और जब उन्होंने, वो कहते ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। इससे क्रूड एग्जाम्पल हम भक्तों को शायद ही कोई मिले भागवत में। उसने अगली बार जब जन्म लिया तो सौतेली मां से जन्म लिया और फैसला किया कि अब की बार मुंह से ही नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ इसने मुझे इतना निकृष्ट योनि में डाल दिया, हिरण बना दिया इतनी शुद्ध भक्ति करते हुए। भरत शब्द का अर्थ क्या है देखिए, अगर हम संस्कृत ट्रांसलेशन में जाएंगे तो भ का अर्थ होता है दिव्य ज्ञान, और रथ का अर्थ होता है जो दिव्य ज्ञान में रथ है, और भारत का मतलब है जो दिव्य ज्ञान में रथ है उसके फॉलोअर्स हैं, वो भारतवासी कहलाते हैं। तो स्कूल में भेजा गया, एक ग्रंथ में बताया गया है कि स्कूल में भेजा गया, टीचर ने मार मार करके उसकी पिटाई की कि कुछ तो बोलो, कुछ तो पढ़ाई करो। पीटीएम में पेरेंट्स को भी बुलाया कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल डल है। कितनी कठोर निंदा सुनी जड़ भरत ने, लेकिन अंदर अंदर जो अग्नि की ज्वाला थी वो जल रही थी कि मैं इस भौतिक संसार से आंखें बंद करता हूं। कुछ ऐसा ही बिग संकल्प हमें भी लेना पड़ेगा। अगर हम सोचते रहे कि नहीं, थोड़ा सा मटका सिल्क भी चल जाएगा, थोड़ा ये भी पहन लेते हैं, थोड़ा ये भी लग्जरी होनी चाहिए, भक्त हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने हमें क्या सिखाया, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम सारे भक्तों का एक ही महावाक्य होना चाहिए, सिंपल लिविंग, जो कुछ है जिससे मिल जाए उसी से काम चलाना चाहिए, लेकिन हाई थिंकिंग होना चाहिए। तो जड़ भरत के विषय में बताया गया कि उनके पिताजी का देहांत क्यों हुआ जानते हैं, सौतेली मां थी, और सौतेली मां कौन सा खाना देती थी, जो उसके अपने बच्चे खा चुके होते थे, थाली में जो बच जाता था वो जड़ भरत को खिलाती थी। और जड़ भरत इस बात को समझते थे कि मुझे झूठा भोजन खिलाया जा रहा है, लेकिन वो माया में नहीं पड़े। हम लोगों को अगर एक दिन अच्छा प्रसाद ना मिले, बोलते खिचड़ी खिचड़ी देते हैं, या तो कुछ मिलता नहीं, छोड़ो मंदिर चलो। लेकिन जड़ भरत ने बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं की, शिकायत नहीं की, झूठा भोजन मिल रहा है, वो खाते रहे। उनके पिताजी के विषय में बताया गया, इसलिए उनके पिताजी की जल्दी मृत्यु हो गई। वो अपने बच्चे के विषय में बहुत चिंतित थे, इतने ज्यादा चिंतित थे कि ये बच्चा ना तो पढ़ाई कर रहा है और ना कुछ ठीक से व्यवहार कर रहा है, तो क्या होगा इस बच्चे का आगे चलकर। इतना ज्यादा तनाव हो गया कि उनका शरीर छूट गया। लेकिन चूंकि जड़ भरत में आ सकती थी इसलिए उनको लाभ मिला पूरा, हालांकि वो दूसरी बात है। आखिर जड़ भरत को देखिए कहां पर ले जाया गया, डाकुओं ने उस पर जो मचान बनाई थी जहां पर वो रक्षा कर रहे थे खेत की, क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने सोचा ये किसी काम का नहीं है, इसको खेत में बिठा दो। और वहां पर फिर डाकू लोग भी आ गए, मारने के लिए तक भी आ गए, तब भी जड़ भरत ने कुछ भी नहीं किया। 100% वो किस पर हैं, भगवान के ऊपर आश्रित हैं। और भौतिक सानिध्य से बिल्कुल बंद किया उन्होंने गेट। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमें जड़ भरत की तरह से 100% सारे शटर बंद कर देने चाहिए, चूंकि हम लोग प्रीचिंग मूवमेंट में भी हैं, लेकिन कम जहां तक संभव हो सके हमें भौतिक सानिध्य नहीं करना चाहिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल मिलता है ना, महाराज प्रताप रुद्र का, कितना भक्तों ने कहा कि महाप्रभु ये आपका भक्त है, इतनी सुविधाएं दे रहा है, लेकिन महाप्रभु ने आखिरी मोमेंट तक उनसे मिलना नहीं चाहा। इस विषय में हम इस कोर किशोरदास बाबा जी महाराज के दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा सानिध्य से भय होना चाहिए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास एक भक्त आया था ना कि महाराज आप यहां पर कर रहे हो जपा, जहां पर लोग मल त्याग करते हैं, मैं आपके लिए एक वो बना देता हूं कुटिया। तो महाराज ने क्या कहा, एक कुटिया को तो संभाला नहीं जा रहा, ये कुटिया जो भगवान ने दी है, एक कुटिया और लेकर क्या करूंगा मैं। तो वहां पर जप करते थे जहां पर लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं। एक बार एक शिष्य ने पूछा कि महाराज आप यहां पर जप क्यों कर रहे हैं, यहां तो बहुत बदबू है। तो गुरु किशोरदास बाबा जी महाराज क्या बोले, जो भौतिकतावादी लोगों में से जो बदबू आती है, ये बदबू से कहीं कम है। उन लोगों की जो चर्चा होती है वो बदबू बहुत भयानक होती है, वो बदबू मैं सहन नहीं कर सकता। तो हम भक्तों के लिए ये जो देवकी का प्रसंग है, जो वो डर रही है, घबरा रही है, उससे हमें आज की डेट में ये संकल्प करना चाहिए कि हम भौतिक संग करेंगे नहीं। जैसा श्रील रूप गोस्वामी का वो ग्रंथ में उपदेशामृत में श्लोक है ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनीयमाग्रह जनसंगश्च लोलयम षडबीर भक्ति विनश्यति। प्रभुपाद जी बोलते हैं यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू अटेन दिस डिवोशनल संकीर्तन मोमेंट, बट दिस फॉर्चून कैन बी रुइंड। प्रभुपाद अंग्रेजी के लेक्चर में बोल रहे हैं ऐसे, दिस फॉर्चून कैन बी रुइंड, रुइंड मीन्स बर्बाद हो सकती है ये भक्ति। अगर आपने क्या किया तो जनसंगश्च, दोनों बार दो ये श्लोक आता है, दोनों श्लोकों में उत्साहात प्रसादात, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात जनसंगश्च, उसमें भी आता ना क्या शब्द है, संग त्यागा शुडोभीर भक्ति प्रसिद्ध देती, उसमें भी संघ के ऊपर कहा, इसमें भी संघ के ऊपर कहा। तो अर्थात हमें संघ के विषय में बहुत चूजी होना चाहिए, और अगर कभी मौका मिल जाए, जबरदस्ती कोई ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए, किसी विवाह में जाना पड़ जाए, कभी कभी भक्तों को जाना पड़ता है। अभी मुझे एक विवाह में जाना पड़ा, मैपल होटल था, बहुत बड़ा होटल, तो वहां पर गए तो वहां देखते हैं कि माताओं ने माय गॉड क्या मेकअप और क्या ड्रेस, क्या बज रहा है वहां पर। लेकिन हम लोग बड़े परेशान, अब यहां पर क्या खाएं और क्या करें, लेकिन हम लोगों को उस समय बहुत चूजी होना पड़ेगा, उस समय याद करना पड़ेगा या माला निकाल करके कुछ माला का जप करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हाँ वो जब लोग आए तो हम उनको कह सकते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी आकर्षित नहीं होना, कभी भी रस नहीं लेना ऐसे एटमॉस्फेयर में जा करके, चूंकि संघ का मतलब होता है कि आप आकर्षित हो गए। हम लोग संघ लेने नहीं जाते, ऐसे स्थानों में देने जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद का एक कोटेशन मिलता है कि जब जब आपको किसी भौतिक संघ में जाना पड़े, उस समय ऐसे सावधान रहना जैसे सांप को पकड़ने वाला जो मदारी होता है, सांप को जब पकड़ता है तो बहुत केयरफुल रहता है कि कहीं से भी उछल कर ये डंक ना मार दे। तो भक्तों को चाहिए जब भौतिक सानिध्य आए तो ऐसे केयरफुल रहें जैसे सर्प के साथ आदान प्रदान किया जाता है। और यही एकमात्र ऐसा कारण है जिसके कारण भक्तों को कभी कभी नीचे जाना पड़ता है, भक्तों को भक्ति से थोड़ा दिन के लिए अवरोध आ जाता है कि वो संग जो है वो डुबो देता है। तो इसलिए हमने ये विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर का ये कोटेशन पढ़ा कि अगर व्यक्ति ऐसे डरता है तो भगवान के रूप गुण रूपी महासमुद्र का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो संग के लिए हमें इस संसार को पहचानना पड़ेगा। बड़ा ही सुंदर कोटेशन है कि जो संसार को पहचान लेते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं। वो बुद्धिमान नहीं होते जो डिग्री ले लेते हैं, एमबीए डिग्री ले लिया, एमसीए ले लिया, बीटेक एमटेक ले लिया। जो संसार को पहचान लेते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि ये संसार का क्या गति है, कैसे ये चल रहा है। अगर जो संसार को नहीं पहचान पाते वे संसार चक्र में फंस जाते हैं। और चूंकि भौतिक जगत कष्टों का स्थान है और यह शरीर कष्ट भोगने का सबसे उत्तम यंत्र है, इस शरीर से आप आनंद बहुत कम उठा पाओगे लेकिन दुख बहुत देता है यह शरीर।
अगर हम देखें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं ना, आनंद आप कितना उठा सकते हैं, इस शरीर से आप क्या आनंद उठा सकते हो, भक्ति को छोड़ के, भक्ति का आनंद तो बहुत ऊंचा है, लेकिन भक्ति को छोड़ के इससे हम क्या आनंद उठाएंगे, या तो कुछ खा लेंगे, थोड़ा पहन लेंगे बस, लेकिन दुख कितने देता है, कभी आंख में दर्द है बुढ़ापे में, कभी उंगली में, कभी एक्सीडेंट हो गया, कहीं इतने सारे दुख देता है शरीर, कभी थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो पेट में गड़बड़। तो भौतिक कष्ट देने का सबसे उत्तम यंत्र है ये मनुष्य शरीर, लेकिन अगर संसार को पहचान लिया जाए तो फिर ये सबसे अच्छा है। तो प्रभुपाद जी एक कोटेशन में कहते थे, अपने शिष्यों को बार बार कहते थे कि केवल एक जीवन दे दो, स्त्री से आकर्षित हुए बिना, एक स्त्री से संबंध बनाए बिना, केवल एक जीवन मुझे दे दो, एक जीवन अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं आपको भगवान के धाम भेज दूंगा। चूंकि ये कितने जन्मों में हम वो सब भोग ले चुके हैं, कर चुके हैं, एक जीवन मुझे दे दो, तो स्त्री पुरुष आकर्षण जो है ये माया की व्यवस्था है, प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन मेरे शिष्यों में क्या है कि वे घबराते नहीं हैं। देखिए शिल भक्ति चारु महाराज ने एक पुस्तक निकाली है, उनका पुस्तक का नाम है करुणा के सागर। उसमें महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद भी बहुत डरते थे, प्रभुपाद भी बहुत चिंतित रहते थे, जानते किससे, हमें यह सुनकर बहुत खुशी होगी। प्रभुपाद जी को अपनी चिंता नहीं थी, प्रभुपाद को अपने शिष्यों की चिंता नहीं थी। उस पुस्तक में महाराज भक्ति चारु महाराज कह रहे हैं कि प्रभुपाद को सबसे ज्यादा चिंता थी थर्ड जनरेशन की, जो तीसरी पीढ़ी आ रही है, अर्थात हम लोग हम लोगों की सबसे ज्यादा चिंता थी प्रभुपाद को, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं उस लेक्चर में कि मैंने अपने शिष्यों को फेस टू फेस डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन जो मेरी तीसरी पीढ़ी आएगी जिसने मुझे पर्सनली नहीं देखा, मुझे उनकी बहुत चिंता है और उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। प्रभुपाद एक दिन अपने रूम में बैठकर सोच रहे थे, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, जैसे एक भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है ना कि इतना धन तो मैंने कमा लिया है कि मेरे पुत्र अब आराम से जिएंगे, उससे तीसरी पीढ़ी का क्या होगा। एक बार एक सेठ जी रो रहे थे तो उससे पूछा, भाई क्या समस्या है, कहने लगे छह पीढ़ियों का तो इंतजाम हो गया, सातवीं पीढ़ी जो आएगी उसके लिए धन कहां से आएगा, वो इसलिए मैं रो रहा हूं। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे चिंता में थे, तो प्रभुपाद ने जानते क्या किया, भक्ति चारु महाराज करुणा के सागर पुस्तक में बता रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद ने उस दिन से निश्चय किया, मैं अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक अपनी संपत्ति छोड़ के जाऊंगा। और ये जो पुस्तकें हम जो देख रहे हैं प्रभुपाद की, ये पुस्तकें प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के लिए नहीं छोड़ी थी, प्रभुपाद उस लेक्चर में बता रहे हैं कि मैं अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए ये प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊंगा। इसलिए प्रभुपाद ने बात करना, सोना और मिलना तीनों कम कर दिए थे। करुणा सागर की पुस्तक में भक्ति चारु महाराज कह रहे हैं कि बात करना, मिलना और सोना कम करके प्रभुपाद ने अनुवाद पर ज्यादा समय दिया। उसके बाद से जब उनको चिंता हुई अपनी तीसरी पीढ़ी की, तो अनुवाद करते थे, बहुत ज्यादा अनुवाद को समय दे रहे थे। और हमने देखा लास्ट लेसन में किस प्रकार से प्रभुपाद बिल्कुल डेथ बेड में लेटे हैं और वहां पर भी डिक्टाफोन के थ्रू वो प्रपट लिखवा रहे हैं, बिल्कुल डेथ बेड पे। तो ये प्रॉपर्टी, ये चिंता, चिंता करना स्वयं में खराब नहीं है, लेकिन हम किसके लिए एंग्जाइटी कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें चिंता करनी चाहिए, कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति दिख जाए तो हमें देखते ही डर जाना चाहिए। जैसे कृष्ण गीता में क्या एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया ना भगवान ने, गीता में एक एग्जाम्पल देते हैं कछुए का, है ना। कछुआ जब देखता है कुछ खतरा है तो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, और जब देखता है कि यहां इंद्रियों के लिए कोई समस्या नहीं है तो अपनी इंद्रियों को खोल देता है। तो ऐसे ही इस प्रसंग से हमें यह टीचिंग लेनी है कि कोई भी मौका, कोई भी क्षण, प्रति क्षण हम हमेशा सुरक्षित रहें। जैसे ट्रैफिक में लिखा होता है ना, सुरक्षित चलें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये वास्तव में हमारे लिए है ये स्लोगन कि हमारी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हम भक्तों को हमेशा अपने जैसे एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर की तरह से सावधान रहना चाहिए। ड्राइवर ये तो नहीं सोचता कि अब बस पंजाबी बाग मंदिर आने वाला है तो अब तो मैं कैसे भी गाड़ी चलाऊं, ऐसे सोचते हो। ड्राइवर क्या देखता है कि जब तक मेरी गाड़ी बिल्कुल सही अपने गंतव्य पे ना पहुंच जाए, पार्किंग में ना लगा दी जाए, तब तक वो सावधान रहता है। तो हमें कब तक सावधान रहना है,
जब तक हम फुल्ली डिवोटेड ना हो जाएं, हमारी गुरु में पूरी तरह से श्रद्धा ना हो जाए और भगवान में पूरा आकर्षण हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। वो प्रेम होगा किससे? एक बड़ा ही सुंदर श्लोक मैंने आप भक्तों के लिए ढूंढा है, ये है पद्म पुराण से स्वर्ग खंड अध्याय 48 और 49। इसमें ये वास्तव में जैव धर्म में उन्होंने कोट किया है श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कि शुद्ध नाम क्या होता है। शुद्ध नाम से ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो शुद्ध नाम की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि शुद्ध नाम आएगा कैसे। वो बोल रहे हैं एक श्लोक कोट करते हुए पद्म पुराण का, नाम अपराध युक्तानाम नामान्येव हरन्त्यघम् अविश्रांत प्रयुक्तानि ताने वार्थकराणि चाह। वो कह रहे हैं पूर्ण श्रद्धा से उदित हुई अनन्य भक्ति के द्वारा जिस कृष्ण नाम का उदय होता है, अर्थात पूर्ण श्रद्धा से उदित हुई अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का हम सब जानते हैं, गीता में कई बार आता है ना ये श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी न। अनन्य का मतलब है कि पूरी श्रद्धा इसमें हो कि मेरे जीवन में नंबर वन कृष्ण है, इसके अलावा सब दो नंबर पे हैं, बाकी माल दो नंबर है, एक नंबर का माल कौन है कृष्णा, बाकी दो नंबर है, दो नंबर में कृष्ण को पसंद नहीं रहना, एक नंबर में है रहना। तो अनन्य भक्ति के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के द्वारा जिस कृष्ण नाम का उदय होता है उसे ही शुद्ध नाम के कहते हैं। इसके अतिरिक्त सब नाम अपराध और नामाभास है, ये भक्ति विनोद ठाकुर वहां से एक रेफरेंस दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त सब नामाभास और नामा अपराध है। आगे दूसरा एक और बता रहे हैं अपने पास से भक्ति विनोद ठाकुर, प्रतिकूल भावों को हृदय से निकाल कर। वो कह रहे हैं जब आप जप करने बैठो शुद्ध नाम के लिए प्रे करो, कि शुद्ध नाम आएगा कैसे। हम सब लोग चाहते हैं ना कि शुद्ध नाम आए हमारा। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं जब आप जप करने बैठो उस समय आप क्या करो, जितनी भी नेगेटिविटीज है प्रतिकूल भाव है कि कल ये समस्या थी परसों ये समस्या आएगी ये प्रॉब्लम होगी, होता है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी समस्याओं को एक साइड कर दो, प्रतिकूल भावों को हृदय से निकाल कर और अनुकूल भावों को वहां रखो, प्रवृत्ति को डालो। उस समय जो नाम जप किया जाएगा दैट इज कॉल्ड प्योर शुद्ध नाम माना जाएगा। जप करने से पहले ये थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी हमें, इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर बोलने की यही शुद्ध नाम है। तो उसमें कई भक्त पूछते हैं कि फिर आप लोग ये गिन करके जप क्यों करते हैं, संख्या पूर्वक नाम क्यों करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर वहां इसका भी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि हम लोग गिन करके नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे यह पता चलता है कि नाम में रुचि बढ़ रही है या घट रही है अगर हम गिन कर लेते हैं तो। अगर हम गिन कर नाम नहीं लेंगे तो यह कैसे पता चलेगा कि नाम में रुचि बढ़ रही है घट रही है। अर्थात 16 माला जब हो हमारी तो हमें उस समय अपने आप को चेक करना चाहिए, अब मुझे खुशी हो रही है या दुख हो रहा है। अगर हमें दुख हो रहा है तो इसका मतलब नाम में रुचि बढ़ रही है, करे 16 माला हो गई चलो एक दो माला और एक्स्ट्रा कर ही लेता हूं फिर तो। लेकिन अगर हमें खुशी हो रही है, अरे जान छुटी आज की तो इसको पार्किंग में लगाओ अब कल देखेंगे, इसका मतलब है कि नाम में रुचि नहीं बढ़ रही है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये बता रहे हैं जैव धर्म के अंदर कि 16 माला होने के बाद हमें चेक करना चाहिए अपना टेम्परेचर। और देखिए मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि जब आपकी 16 माला हो जाए ना, एक दो माला एक्स्ट्रा करना, वास्तव में तो माला वही होगी आपकी, जो 16 है वो उतनी क्वालिटी की नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो तो गुरु महाराज का आदेश है ना, उसको हम पालन कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो करेंगे, अरे 16 माला भी नहीं करता, कितनी गलत बात है ना। लेकिन जब आप एक दो माला एक्स्ट्रा करके देखना, वो जो टेस्ट आएगा वो शुद्ध नाम होगा और वो हमें शुद्ध करेगा। और कम से कम मैं तो हर अपने मिलने वाले भक्तों से प्रे करता हूं, कम से कम एक माला अपने गुरु महाराज के लिए करना चाहिए हमें। 100 माला से भी बढ़कर होगी वो एक माला, जब हम गुरु महाराज के लिए एक माला करेंगे ना कि मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य, विशेष रूप से मैं जो प्रे करता हूं मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य जो है फर्स्ट क्लास रहे, विशेष रूप से उनका स्पीकिंग पावर, क्योंकि जब हम 2005 और 2007 के लेक्चर सुनते हैं महाराज की कितनी गुलाबी आवाज थी और कितने सुंदर वो लेक्चर जब देते थे तो वो आवाज सुनने के लिए फिर से लालायित है कि हे भगवान वो आवाज फिर से लौटा दो। तो एक माला में महाराज के स्वास्थ्य के लिए करनी चाहिए ताकि वो माला देखिए उसकी क्वालिटी कुछ अलग ही होगी कि ये माला ये नाम मैं अपने गुरुदेव के लिए ले रहा हूं, तो आप निश्चित रूप से शुद्ध नाम के लेवल पर आएंगे। और जब हम शुद्ध नाम के लेवल पर आएंगे तो हमारे हृदय में क्या आएगा, असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। फिर हम कभी भी गंदे संग में नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे भी तो उनको भक्त बना देंगे, उल्टा उसको उनको इन्फेक्ट कर देंगे। तो इसलिए भक्त लोग कभी भी ऐसा संग नहीं करते, बल्कि चिंतन करते हैं। जैसे वो भृंगी पक्षी का एक आता है ना एग्जाम्पल, जो एक कीट को पकड़ के लेके आता है और वो उसका चिंतन करता है और वो अपनी योनि बदल जाती है जीते जी। इस प्रकार से हम भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो चूंकि समय हो गया, आपका कोई किसी का प्रश्न है या चर्चा तो आपका स्वागत है। यस प्रभु जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका प्रवचन रहा। छोटे से दो प्रश्न है प्रभु जी की। एक पहले तो ये कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें भक्त को डरना चाहिए, हमेशा उसको डरना चाहिए और चिंता करना चाहिए। लेकिन उसमें हम भगवद गीता में 18.66 में देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरी शरण ले लो, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, डू नॉट वरी। तो वहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो, लेकिन उसका भी आपने काफी तक वैसे जो आंसर दे दिया, लेकिन आप थोड़ा सा और उसको खुलासा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा
अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी ने कि भगवान कह रहे हैं डरो मत और आप कह रहे हो आज बताने आयो डरो तो कैसे समझेंगे इसको। देखिए डरना किससे, गीता में ही आता है 16वें अध्याय में, कि जो दैवी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो जानता है किससे डरना चाहिए, क्या करनी है क्या नहीं करनी है ना। तो जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। तो हमें डरना है भौतिक संग से, और वहां पर जो भगवान बोल रहे हैं कि मां सुचहा सर्वधर्मान परिदज्जे, उस डर से भगवान कह रहे हैं कि डरो मत। क्योंकि हमने जो लौकिक धर्म बना लिए ना, क्योंकि आत्मा का धर्म एक ही है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो आत्मा का धर्म है वही हमारा सनातन धर्म है जो कभी बदलता नहीं। लेकिन जो हमारे शरीर के धर्म है उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि उनको सब त्याग दो, उनको सबको छोड़ दो और उसके लिए ना डरो। क्योंकि जब कोई भक्ति में आता है तो वो कहता है प्रभु जी मैं तो माता का भक्त था, और कहीं वो माता जी नाराज तो नहीं होंगी, जय माता दी नाराज तो नहीं होंगी। कोई कहता है मैं उनका भक्त था, वो नाराज तो नहीं होंगे, हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी नाराज तो नहीं होंगे। नहीं, वो तो और उछलेंगे कूदेंगे नृत्य करेंगे कि हमारी ड्यूटी पूरी हुई। जैसे हनुमान जी की एक इच्छा है कि जितना भी सारा धन है वो भगवान राम की सेवा में लगे। तो जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो कभी घबरा जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें नहीं डरना है। जब लौकिक धर्मों को आप त्याग करेंगे, जैसे पिता का धर्म, ऋषि का धर्म, बहुत सारे धर्म है ना। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में एक श्लोक है, देव ऋषि करके एक श्लोक है ना, देवताओं के हमारे ऋण होते हैं, हमारे माता पिता के ऋण होते हैं, पितरों के ऋण होते हैं, बहुत सारे ऋण होते हैं। तो अगर आप केवल कृष्ण की भक्ति करोगे, जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं वो हमें यही तो बोलते हैं, मैं जिस मंदिर में अपना प्रोग्राम करता हूं तो वहां पर वो मंदिर हमारा नहीं है वास्तव में, वो स्मार्ट ब्राह्मणों का है। तो वहां के जो पुजारी है मुझसे हमेशा दुखी रहते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो बस कृष्ण कृष्ण बताते हैं, अरे और भी बहुत कुछ है वो भी करो। तो भगवान बोलते हैं कि जब मेरी शरण में आ गए तो बाकी सारे ऋण उऋण हो गए आपके, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो डर के लिए भगवान बोल रहे हैं मां सुचहा। लेकिन यहां पे हमें भक्तों को अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि अभी हम परिपक्व नहीं हुए। जब हम भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे, जैसे प्रभुपाद जी अब पूरी तरह से मैच्योर थे। अब सोचिए प्रभुपाद ने जो संघ अमेरिका में लिया वो तो देखने के संघ के लायक भी नहीं था, लेकिन चूंकि प्रभुपाद एक्सपर्ट हैं, प्रभुपाद जिसको भी मिलेंगे जिससे भी बात करेंगे उसको भक्त बना देंगे, ऐसी अवस्था में भक्त संघ करने से डरेगा नहीं। लेकिन चूंकि हम अभी मैच्योर नहीं हुए, इसलिए हमें विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने ये प्रॉपर जो लिखा है, प्रभुपाद ने पूरा उसी को फिट किया है इसमें। तो इसलिए हमें कहा, हमें सावधान किया ताकि हम भक्ति में मैच्योर हो जाएं। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं वो भी ट्रैवल करते हैं, वो भी कहीं भी जाकर बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, तो वो उस लेवल पर हैं एक्चुअली। लेकिन हम लोगों को बचना चाहिए, ठीक है, हमारे लिए है ये शिक्षा। ठीक है, हरे कृष्णा।
दूसरा प्रश्न,
यस प्रभु जी,
हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बोला कि जैसे हमारी प्रायोरिटी जीवन में कृष्ण होना चाहिए, नंबर वन प्रायोरिटी.
यस.
तो फिर जैसे आचार्य हैं, प्रभुपाद हैं, और भगवान कहते हैं आचार्य माँ अभी जाना थी, और भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, तो भक्त को प्रसन्न करो. तो फिर इसको
हाँ, तो वो अलग नहीं है ना. अगर जैसे गाय को आपको प्रसन्न करना है तो बछड़े को दूध पिलाना होगा, बछड़े को रखना होगा. तो भागवत के महात्म्य में कहा गया, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जिस जो व्यक्ति मेरे भक्त का भक्त है, आता है ना मद पूजा व्याधि कहा, जो मेरे भक्त का भक्त है वास्तव में वो मेरा भक्त है. और भागवत के तात्पर्य महात्मा में कहते हैं कि एक स्थान में कि जिस प्रकार से गाय नया नया बछड़ा देती है, उस बछड़े के पीछे चलती है, मैं भी अपने भक्त के पीछे पीछे ऐसे ही चलता हूँ, जो मेरे भक्त को सम्मान करता है या उसकी पूजा करता है. तो जैसे वो बड़ा ही सुंदर श्लोक है शिव जी का, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम. पद्म पुराण में बोल रहे हैं ना शिव जी कि सारी पूजाओं में सबसे बड़ी पूजा क्या है, विष्णु की पूजा करना. लेकिन विष्णु की पूजा से भी बढ़कर पूजा क्या है, उनके भक्तों की पूजा करना. तो वास्तव में एक समुच्चय है, ऐसा नहीं कि भक्त और भगवान अलग हैं, बल्कि ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान जो है, ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की हम पूजा करते हैं. वही तो सीक्रेट है भक्ति का. जितना ही हमारी आसक्ति भक्तों में होगी उतना ही हमारी भक्ति मजबूत होगी. तो हमें भक्तों में आस्था बढ़ानी है अपने, इसलिए ठीक है. श्रीमद् भागवतम के 3.25.20 में यही शिक्षा है कि हमें भक्तों में आसक्ति बढ़ानी होगी. माता देवती को कपिल देव भगवान बोल रहे हैं, ठीक है. हाँ यस प्रभु जी जल्दी से बताइए.
हरे कृष्ण प्रभु जी. जैसे हम जीव जो है भगवान का अंश है, तो यहाँ पर बलराम जी के लिए भी भगवान ने अंश शब्द यूज किया है, जबकि भगवान का विस्तार है. थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर करेंगे.
दो प्रकार के अंश होते हैं ना, एक होता है स्वांस, एक होता है भिन्न अंश. तो बलराम जी भगवान के स्वांस हैं और हम हैं भिन्न अंश, हैं दोनों अंश, एक भिन्न एक स्व, ठीक है. हाँ यस प्रभु जी बताइए. माइक माइक
घोड़ा बंद कर देता है, बाड़ी के सड़ में आने के बाद वही कुत्ता उसके पैर चाटने लग जाता है, शांत हो जाता है.
हाँ प्रभु जी बहुत सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे घर के बाहर लिखा होता ना बिहेवियर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्ते से सावधान. और जैसे ही आप घर में प्रवेश करो, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ था ये. मैं मुझे बहुत डर लगा था. एक्चुअली दूध लेने जाता था किसी माता जी के घर में, तो उनके घर में एक बहुत भयंकर कुत्ता था. और जब भी मैं जाता था उनको बोलता था कि देखो जी वो उनको थोड़ा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि बहुत भयंकर और बहुत ऊंचा कुत्ता. एक दिन क्या हुआ कि मैं उनके घर में प्रवेश कर गया और वो कुत्ता बाहर से ही आ रहा है, माय गॉड, यानी अंदर आ रहा है और मैं अंदर हूँ और कोई है नहीं वहां पर. तो मैंने उन माता जी का नाम लेना शुरू किया, माता जी जल्दी आइए. वो माता जी ने जैसे ही कुत्ते का नाम लिया, पता नहीं क्या नाम था, कुछ ऐसा ही था, डेजी डेजी करके, डेजी उन्होंने कहा, डेजी. और जैसे ही डेजी कहा, वो डेजी एकदम शांत हो गई. तो मुझे प्रभुपाद का वो उदाहरण याद आया कि जो माया है वो कुत्ते के समान है, और अगर हम माया से टक्कर लेंगे तो माया में पूरा उखाड़ फेंकेगी. लेकिन जैसे कृष्ण बोलते हैं ना, मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे, अगर मेरी शरण में आ गए, यानी मालिक की शरण में चले गए, तो माया उन्हीं की है, तो फिर तो माया छोड़ देगी उसको ना. तो बड़ा ही अच्छा आपका एनालॉजी है, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रंथराज. यस यस पूजी बताइए.
हरे कृष्ण पूजी. आपने जिस प्रकार से बताया कि शिकायत नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहता था, ये शिकायत से क्या हमको समझना चाहिए, क्या ये सुझाव है या ये निंदा है? और फिर आपने बीच में भी बताया कि जो हृदय के अंदर गंदगी है उसको बाहर निकालना चाहिए. तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर
शिकायत को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मैंने क्या बताया, शिकायत नहीं करना चाहिए, मतलब
हाँ आप बीच में बता रहे थे कि ना हमें सहन करना चाहिए और शिकायत नहीं करना चाहिए कोई कमी इत्यादि अगर हम देखते हैं।
अच्छा हाँ, प्रसादम वगैरह में जैसे जड़ भरत का मैंने एग्जांपल दिया। यस
जी, जी। तो अगर शिकायत ये सुझाव है या निंदा है उसको किस रूप में लेना है कि अगर जैसे हम कुछ चीज देखते हैं और उसके बारे में नहीं करते तो कई बार वो अंदर ही रह जाता है और वो मवाद के समान बढ़ता चला जाएगा। और अगर नहीं उसको एक तो है प्रकट करना निकालने के लिए और दूसरा है सही करने के लिए। तो
यस बहुत अच्छा आपका
आप
बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके विषय में बताएंगे प्रोजी?
बहुत अच्छा प्रश्न है प्रोजी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसमें दो मार्ग हैं। एक तो ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर मेरे जीवन का गोल है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है इसी जन्म में, मैं संकल्प पूरा दृढ़ संकल्प है कि इस जीवन में मुझे भगवान को प्राप्त करना है, जैसा कि जड़ भरत का हमने चर्चा की कि जड़ भरत का ये गोल सेट था कि इसी जन्म में मुझे भगवान के धाम जाना, अब मैं हिरण और इधर उधर किसी में आसक्ति नहीं करूंगा। अगर हमारा इस परिपक्व अवस्था है तो फिर अपने लिए तो भक्त कोई शिकायत नहीं करता है, कोई शिकायत नहीं, जैसा भी मिल रहा है जैसा भी, क्योंकि कृष्ण भी बोलते हैं भागवतम के 10वें स्कंद में आएगा ये कि भगवान बोलते हैं कि मैं उस व्यक्ति से बहुत शीघ्र प्रसन्न होता हूं जो तीन कार्य करता है। पहला, जैसी भी मैंने परिस्थिति दी है उसमें वो संतुष्ट रहता है, जैसी भी परिस्थिति दी है वो मैंने दी है, अगर वो संतुष्ट रहता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। दूसरा, समस्त जीवों पर दया करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और अपनी इंद्रियों का संयमन करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। ये तो है पर्सनल लेवल के लिए। अगर आपका ये दृढ़ संकल्प है कि इसी जन्म में मुझे भगवान के धाम जाना है, ये पर्सनल लेवल पे है। लेकिन जहां तक टेंपल मैनेजमेंट है तो आप करेक्शन के आधार पर जो हायर अथॉरिटी है उसको सूचना दे सकते हैं। मान लीजिएगा कुछ ऐसा है, अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो वो रूटीन में ऐसे ही चलेगा और निश्चित रूप से उससे मंदिर का नुकसान होगा। जो बाहर से कोई डिवोटी आएंगे उनको भी हो सकता है वो अच्छा ना लगे और किसी और भक्त का लॉस भी हो। उस केस में हमारी ये ड्यूटी बनती है हम हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें कि आप काइंडली चेक कीजिए, हो सकता है इसमें कुछ करेक्शन हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके, और फिर उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये सबसे जरूरी है। ये नहीं कि आपने इन्फॉर्म कर दिया और बाद में आप ये कंटेम्पलेट करो कि मैंने बता भी दिया, कुछ महाराज ने कुछ किया नहीं, टेम्पल प्रेसिडेंट ने कुछ किया नहीं, ये पता नहीं ऐसा सब चल रहा है, उस फिर हमारी ड्यूटी नहीं है। वो हमारी ड्यूटी है जस्ट इन्फॉर्म एंड फॉरगेट अबाउट और पूरी तरह से भगवान के सेवा में अपने आप को लगाना। ठीक है, दो मार्ग हैं ये। तो पर्सनल लेवल पे नो रिक्वायरमेंट, जैसा है जैसा मिल रहा है उसमें अपना गोल पे हमारा टारगेट होना चाहिए। जैसे अर्जुन का गोल क्या था, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। हमें भगवान का धाम दिखना चाहिए, भक्तों की सेवा दिखनी चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं। जैसे बड़ा सुंदर स्लोगन है ना, पर दुख दुखी और दूसरा क्या है पर दुख दुखी पर सुख सुखी, मतलब अपने लिए कुछ नहीं। और प्रभुपाद ने हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में अपने गुरु भाइयों से जब प्रभुपाद मिल रहे थे कितने लोगों को रिक्वेस्ट किया, लेकिन प्रभुपाद का लक्ष्य था जब मिस्टर सुरेंद्र कपूर, शायद नाम एस के कपूर जो चांदनी चौक में है, जब वहां प्रभुपाद जा रहे थे छपवाने के लिए और प्रभुपाद के पास पैसे नहीं होते थे, 5 रुपए 2 रुपए बचाने के लिए भी बाय वॉक आते थे, तो प्रभुपाद से पूछा ये सब क्यों करते हैं भक्ति वेदांत, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, ये मेरे जीवन का मिशन है, ये मेरे जीवन का गोल है और आप एक दिन देखेंगे मैं सफल हो गया। तो ऐसा ही कुछ हमारा संकल्प होना चाहिए कि मुझे इसी जन्म में भगवान के धाम जाना है। और आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा कि प्रभुपाद शुद्ध भक्त बनने में कितना समय लगेगा मुझे तो आप वो वीडियो आप देखना, उस वीडियो में प्रभुपाद बोल रहे हैं आंखें निकाल करके, ओनली 1 मिनट, प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं उस लेक्चर में, 1 मिनट ओनली शुद्ध भक्त बनने में आपको 1 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा तो पर्सनल लेवल पर नो रिक्वायरमेंट एंड 100% सरेंडर टू डिवोटीज एंड लॉर्ड। ठीक है, हरे कृष्ण।
थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर सकते मैं?
ठीक है हाँ, चूंकि सब भक्तों को जाना होगा सेवा में। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल।